লাইট কম তো, তিনটে লাইট জ্বল, এটা কমে দে,
একটা লাইট কম।
महाराज ने दर्शन के संबंध में बतलाया, बहुत ही सुंदर विचार उन्होंने बतलाया। कृष्ण नाम स्वयं कृष्ण है, किंतु कृष्ण नाम बहुत जन्म जन्मांतरों में करेगा तो भी अपराध के कारण, नामाभास के कारण और असत्संग यदि उसमें होता रहे तो बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत विलंब। इसलिए हरिनाम संकीर्तन विजय थे कृष्ण संकीर्तन परम विजय थे ये कहा, तभी हो सकता है जन्म जन्मांतर लगे। इसलिए साधु संघ में अनर्थ को छोड़ करके शुद्ध रूप से भजन करने से शीघ्र ही भजन में से होती है। किंतु इसमें भी थोड़ा सा एक और विचार है, पिलरूप को सामने बताया, साधु संघ भी कैसा हो स्वजाती होना चाहिए, स्वजाती होना चाहिए। हम दूसरे प्रकार के भजन के इच्छुक हैं और कोई दूसरा दूसरे प्रकार का है, इस प्रकार के साधु संघ से नहीं। स्वजाति आश्रय स्निग्ध एक समान भाव वाले हैं, हम जिस चीज की आकांक्षा करते हैं उसी रूप में वो भजन करने वाले हैं कि नहीं, और हमारे प्रति स्नेहशील हो, हमारे गुरु वर्गों के प्रति, गुरु के प्रति भी उनका वैसा ही भाव हो। यदि हम साधु संग कर रहे हैं किंतु हमारे गुरुदेव के विचारों के यदि कुछ वो विरोधी हैं तो ऐसे संग से नहीं होगा, होना चाहिए कैसे, हमारे प्रति स्नेहशील हो, हम जो चाहते हैं उस भजन में निपुण हो, अपने से उन्नत हो और अनर्थ मुक्त हो। यदि ऐसा संग होगा तो बहुत जल्दी ही यह कृष्ण नाम जो हम भजन कर रहे हैं समय से संग बहुत उन्नत होकर की सिद्धि हो। इसलिए शिल रूप को चाने ने कहा, तन्नाम रूप चरितादि सुकृष्ट नाम कवेंद्र रचना मनसी नियोज्य शिक्षण ब्रजे तदानुरागी जनानुरागी। इस पर अधिक जोर दिया, तदानुरागी जनानुगामी काम नये इस्लाम इत्युपदेश कारण, भगवत भक्तों के संग में तदानुरागी कृष्ण के प्रति अनुरागी हैं, गुरु प्रति हमारे गुरु वर्गों के प्रति विचार में रूपगोस्वामी इत्यादि के विचारों में निपुण हो और हमारा स्वभाव उनसे, हम जो चाहते हैं उसको वो दे सकते, ऐसे साधु संघ के अंतर्गत वृंदावन धाम में कृष्ण के नामों को जीवा के साथ उच्चारण करें प्रेम के साथ और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए यदि भजन करें तो जल्दी से सिद्धि होगी। बहुत संक्षेप में महाराज ने कहा किसको हम लोग धारण करें। अभी हम लोग लौटने वाले हैं अपने अपने घरों में, हमारी अभी समाप्त होने वाली है ये परिक्रमा और कार्तिक व्रत, यही सब लोग संदेश लेकर के जाएंगे कैसे भजन होगा, और एक वर्ष तक फिर या 6 महीने प्रतीक्षा करेंगे भजन करते करते फिर संग वैसा संग का अभाव में ये भागवत का भी संग कर सकते हैं। जीवंत भागवत भक्त भागवत के अभाव में यदि वो है तो ठीक है, मैं तो उसके बाद में ग्रंथ भागवत का भी संग, खूब इनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी संगेंगे, रूप गोस्वामी के पुस्तकों को रूप गोस्वामी और उनके अनुगत्य में अर्पण करके तब उनको पढ़िए देखे जैसे नए नए विचार बोल दीजिए।
બાર બાર સમજાય છે, બાર બાર વિચારે તો
who don't or not in the same room towards our predecessor Acharya, then they will not be able to nourish this moon enough. As they should be more advanced than us in all respects. In other words, they should be free from anarthas. So if we chant the holy name in association of such sadhus, then very quickly Krishna Nam will yield all perfection. And then he quoted this verse from Śrīla Rūpa Gosvāmī, Sannāma Rūpa Caritāra Śrīla Sannāma. So in that verse also we find the words Sat Anurāgī Janānugāmī. So Sat Anurāgī means those who have anurāg in Krishna's name, form, qualities, and pastimes. They have developed their attachment and love for Krishna and for his name, form, qualities, and pastimes. And we should perform this chanting of the holy name in remembrance of Krishna's pastimes under their guidance. Anugami, Jananugami means under the guidance of those persons who have this, who awakened this anurag, feeling of attachment towards Krishna's name, form, qualities, and pastimes. And so by chanting the holy name in association with such persons, while living in breath, and meditating on the pastimes of the Lord, then very quickly we will attain this perfection. So now it is the end of Kartik, the end of this Kartik breath, and the end of the Parikrama, and all of us have heard so many instructions now. So Śrīla Gurudeva is encouraging us that when we go back to our home, when we go back to our different places, that we should take these instructions that we have heard, we should fix them in our hearts, and we should meditate on them, and we should go on performing our chanting and remembering, meditating on these things. So the last point you made was that there's both the person Bhagavat and the book Bhagavat. So now we've had so much chance to have association with both, association of sadhus and also hearing Harikatha. And if we go back to our homes, or when we go back to our homes, there may not be so much opportunity to directly associate with the sadhus, but we can remember the instructions we received while we were here, and we can associate with the book Bhagavat when we go back. We can study the instructions of Rupa Goswami, of Krishna Sagaraj Goswami, and in this way get inspiration to perform our Vajana Sadhu.
One thing is to also remember that Swajati Snigdha Ase Vaishnava Sangha Ho. इसमें ये देखेंगे ये हमारे गुरु परंपरा के विचारों को जो लेकर के चल रहे हैं और गुरु ग्रंथ के प्रति गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा है तब ठीक है। यदि स्वजातीय कुछ भी हो, स्वजातीय तो है किंतु हमारे गुरु परंपरा का विरोधी भाव यदि उसमें हो तो जरा सावधानी रखिए। यदि हमारी गुरु परंपरा गुरु के प्रति श्रद्धा ही नष्ट हो गई तो फिर बाकी क्या सब किस लिए कर। इसलिए इस सब संगों से भी सावधान रहे जिससे हमारे गुरु वर्गों के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े। जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, जैसे श्री प्रभुपाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी, उसके बाद में हमारे गुरु जी, उसके बाद में भक्ति वेदांत स्वामी जी हैं, इनके प्रति श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़े। ये जगत के लोग नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल वर्ड से श्रद्धाएं हैं। जब इनके प्रति हमारी श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो फिर हमारा बखेरा जाएगा, तो वो संग करके ही और भजन करके ही काम उदार होगा। जब किसी का संग करने से हमारी नाम के प्रति स्प्रिया दूर हो जाती है, नाम बंद हो जाता है, तो संग की क्या जरूरत। तो उसी के उपाते हैं जो हमारे नाम के प्रति निष्ठा बढ़ाए और नाम में रुचि लाए। और यदि हम 1 लाख नाम करते तो इच्छा हो जैसे आप 1.5 लाख नाम करें, 2 लाख नाम करेंगे, बड़े प्रेम की साथ में करेंगे। और पहले जो हमारी निष्ठा थी गुरु वर्गों में, गुरु में और गुरु परंपरा में महाप्रभु, वो और भी क्रमशः दुगनी हो जाए तब तो उसको समझते हैं, आने तो ये हरिनाम भी छूट जाए, हरिनाम जो करते थे वो भी छूट जाए, गुरु प्रति और गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा हमारी कम हो जाए। इसमें खूब सावधानी के साथ में विचार करके संग साधु संग साधु संग सर्व सिद्धि लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, इसलिए ये सब विचार करके हम साधुओं का संग करेंगे और हम ठीक तरह से भजन मार्ग में प्रवेश करते करते अनर्थ दूर हो जाएगा, जितने परिणाम में भक्ति आती जाएगी और अनर्थ को दूर करने के लिए भी प्रयास करेंगे साथ में। भगवान दूर कर देंगे ऐसा नहीं, कुछ अपने प्रयास से भी हो, कुछ नाम संकीर्तन के और स्वाम कीर्तन के प्रभाव से होगा। इन चीजों को अच्छी तरह से आप लोग समझ करके अवसर करें। हमें
a little further on these points. Remember they were saying that on this point of sadhya and particularly this point of sadhya, taking association of those who are like-minded, he was emphasizing the point that we should take association of those who are like-minded in relationship to the thoughts and ideas of our Guru Parampara and of our faith in our Guru Parampara. So he said that we may find association with other sadhus who are sadhya, in the sense that they also have the same mood in terms of striving to attain, striving to follow the Buddha Sangha, or striving to attain the goal of Krishna praying. But they may not be sadhya towards our specific Guru Parampara. They may be similar in mood in some respects, but they may be opposed to the specific line of thought of our Guru Parampara. They said that this type of sadhya will not be helpful to us, because by that association, our faith in our specific line of gurus will be destroyed. So he said that, like in the case of Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, and Param Gurudev, and Bhaktivinoda Swami Maharaj, these are not persons of this world. They are all associates of the world. So we should not see them in any mundane way, and we should have faith in them and their instruction. And we should take association of persons who nourish our faith in those persons. If we are associating with persons, and by that association the effect that our attachment to the holy name is going down, then what is the value of that association? So we should associate with those who are nourishing our attachment and our faith for the holy name, such that by the awakening of that faith, then very easily one will chant 1 lakh, 2 lakh. If one has faith in the holy name, then naturally one will want to go on chanting. So if on the other hand we are associating with persons and the effect of that association is that our attachment for the holy name and our faith suggest that we should be very careful about this point, and we should take Sadhu Sangha, considering all these things. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Sattarika. All these doctrines are, all these scriptures are declaring that we should associate with the sadhus, and they should be of this nature. So by that kind of association, our inertness will go away, but we also must make some endeavor to give up our inertness.
Now I'm coming to my subject. अब हम लोग अपने विषय पर आ रहे हैं. हम लोग कृष्ण का स्वरूप बदलाए. अब श्रीमती राधिका जी का स्वरूप वर्णन करते हुए आ रहे हैं. सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद और उनकी एक पराशक्ति भी है. उसी पराशक्ति को स्वरूप शक्ति पराशक्ति स्वभाव की शक्ति बतलाया गया. वही शक्ति विभिन्न रूपों में कार्य करने के कारण उसका नाम विभिन्न रूप से कार्य है. वह एक पराशक्ति क्या है उसी को बतला रहे हैं. महाभाव स्वरूपा राधा का पुरानी सर्वपूर्ण फणि शक्ति कौन रह करे बातचीत में आती
चलो
ये सब देखते महाभाव स्वरूपा एक ही पराशक्ति महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी सर्वगुण फणि सर्व कृष्ण कांता शिरोमणि राधिका होते कांता गण रविता. ये राधिका से ही समस्त प्रकार की कांताओं को तीन प्रकार की कांता बतलाया. ब्रज में गोपियां, द्वारकापुरी में महेशियां, वैकुंठ में लीला. ये तीन प्रधान कांता. किंतु ये सभी का विस्तार गोपियां उनकी काय भी है, महेशियां उनकी वैभव प्रकाश है और लक्ष्मी जी उनके अवतारी कृष्ण होते
लक्ष्मी जी
तार अंश जे रकम होते कृष्णर अंश छे नारायण वैभव प्रकाश दुई रकम एक बलदेव प्रभु ओदिगे और एदिगे नारायण. विराटका जैसे अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार जिस प्रकार से कृष्ण से बहुत प्रकार के अवतार सब रूप वैभव स्वांश जितने प्रकार के अवतार हैं उसमें से कोई अंश है कोई अंशों के अंश कला है कोई कला के भी कला विकला शेष पर्यंत कृष्ण का ही ये सब प्रकार है सब रूप वैभव. वैसे ही अंशनी श्रीमती राधिका से पंच शक्तियों का प्रकाश होता है. और जो बतलाया ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं प्रियतिया कृष्ण की वो श्रीमती राधिका जी की काय भी है. जो साधन के द्वारा सिद्ध हुई है वो काय भी नहीं है वो साधन सिद्ध है. तो ये सब जितने भी हैं ब्रज में जो नित्य सिद्धा है वो काय भी काय माने राधिका ही है अपना प्रकाश किया. जैसे कृष्ण ही से सब सद्रूप वैभव प्रकाशित होते हैं और राधा जी से प्रकाशित वैभव और जेनो तार अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी प्रति. जैसे कृष्ण से वैभव प्रकाश का सद्रूप वैभव निकले हैं वैसे वैभव और जेनो तार अंग विभूति चौथी विभूतियां हैं कौन महिषियां बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी सती ऐसे ही राधिका जी चाहिए ये बिंब प्रतिबिंब इत्यादि ये सब हैं लक्ष्मी तार वैभव विलास अंशरूप जैसे कृष्ण के वैभव विलास हैं नारायण है ऐसे ही श्रीमती राधिका जी समस्त शक्तियों की अवतारी है अंशिनी है और सब इनके प्रकाशित है महिषी गण प्राभव प्रकाश स्वरूप महिषियां ये प्राभव प्रकाश जैसे द्वारकापुरी में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न ये सब क्या है प्राभव प्रकाश इसके लिए चेतन में दूसरी जगह जाना पड़ता है शिक्षा में ऐसे श्रीमती राधिका जी से ये महिषियां जो है वहां की ये प्राभव प्रकाश स्वरूप आकाश स्वरूप भेदे ब्रज देवीगण काय की रूपता रसे रसा आकाश स्वरूप राधा जी ललिता है किंतु आकार और स्वरूप में और भाव में कुछ है किंतु है काय की रूप राधिका जी का एक भाव ललिता है राधा जी का एक भाव ऐसे अष्ट सखियां मंजरियां हैं 360 प्रकार की गोपियां हैं जो नित्य राधा जी की काय जीव है क्या जरूरत है इसकी उसके लिए बतला रहे हैं काय जीव रूपता रसे रसा रस के कारण ही राधिका जी ने कृष्ण को हलाहल करने के लिए कृष्ण को आनंदित करने के लिए इतने काय जीव रूप वैभव प्रकाश और सब चीजों को प्रकाश किया है क्यों यहाँ पर बहुत से उपकरण नहीं होंगे एक का एक के साथ में तारतम्य वैशिष्ट्य नहीं होगा वहां पर रस का प्रकाश नहीं है कृष्ण को आनंदित नहीं कर सकते इसलिए कृष्ण को आनंद करने के लिए कार्य रूप तार बहुत कांताएं है बहुत कांताएं नहीं होंगी तो रस का प्रकाश नहीं होगा जैसे केवल सूखी हुई एक लता है उसमें पत्ते न हो पुष्प न हो मंजरी न हो तो उसका कोई भी मूल्य नहीं हाँ नित्य सिद्धा पतगुलिया से पतगुलिया से साधन सिद्धा रूप मंजरी गति मंजरी लवंग मंजरी या नित्य सिद्धा राधा रानी का भी आज परवर्ती काले से चाह अनुभक्त से जो अध्याय भजन करके सारा साधन सिद्धा सारा का जीवन
तो उन्हें राधा जी के संबंध में क्या मानेंगे
साधन सिद्धा का होता है जैसे कि उनको साधन सिद्धा और जो है उनका जैसे माना जाता है साधन सिद्ध करके कोई कांसा से
सोना बना
और कोई सोना है उसमें भेद क्या रहेगा तो उसमें भेद तो नहीं रहेगा तो भी कुछ वैशिष्ट रहेगा साधन सिद्धा ही है और जो काय बीमा है वो राधा जी के काय इसलिए रूप मंजरी गति मंजरी लौंग मंजरी इत्यादि जो है ये राधा जी के काय जीवन और रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जो भजन करके सिद्ध होंगे वो साधन सिद्ध जीव को भी क्या है वो काय जीव नहीं है बहुकांता बिना है रस रउल्ला जैसे एक लता हो उसमें पत्ते पुष्प मंजरी न हो फल न हो तो वो उसमें कोई भी उल्लास नहीं इसलिए राधिका जी रस को प्रकाश करके कृष्ण को आनंदित करने के लिए इतना रूप धारण करते यदि चंद्रावली नहीं होती तो राधा जी मान नहीं करती मान करने का कारण क्या है कृष्ण के प्रति कभी कभी उनके पास में चले जाते हैं कभी पद्मा जी के पास में कभी मिल लेते हैं और इनको पता लगता है तो इनको मान हो जाता है चंद्रावली सूची है जो कृष्ण के पास में गई है राधा जी के पास में कृष्ण गई है उनको मान होता है किंतु कृष्ण से बोलना चलना नहीं चाहते उनका मान उत्तम कोटि का नहीं होता है और राधा जी को जब सुन लेती है कि उनके पास में जाए तो ऐसा वक्र मान हो जाएगा कृष्ण को बहुत कठोर तपस्या ने खरीदी तीन संध्या राधा स्नान करके स्वयं और राधा जी का मंत्र जपना पड़ेगा और चंद्रावी लंका विशाखा के चरणों में अन्न विनय करना पड़ेगा और उससे अधिक रूप मंजरी के चरणों में गिरना पड़ेगा जो तुम्हारी सहायता के बिना यहाँ पर रस्ता है, इसलिए इनकी भी जरूरत है। यदि ये नहीं रहती, विपक्षा नहीं रहती, तो इनको कितना अधिक नहीं मान। इसलिए वहां जहां पर भी स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ और सुहित बतलाया गया, वहां पर राधा जी को मैं समझो, प्रधान समझो। राधा जी का स्वपक्ष, राधा जी का विपक्ष, राधा जी का तटस्थ, राधा जी का सुहित। और फिर जब चंद्रावली के तरफ में उनके तरफ में चलेंगे तो राधा चंद्रावली का स्वपक्ष, विपक्ष, सुहित पक्ष और बहुत से विचार। ये सब नहीं होने से अलग संलग्न कैसे होगा? इसलिए साधन अवस्था में ही गौण गुरु के निकट इन सब चीजों को श्रवण करना होगा, राधा जी का सब को समझना होगा। नहीं तो इसके प्रति लोभ नहीं होगा, लोभ होने से चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में बेकार का आया है। आपको उचित था कि आपको जाना चाहिए रमण संप्रदाय में, इससे घर में आने की कोई जरूरत नहीं। इसे महापुरुष के संप्रदाय में आएगा तो ये सबको सुनेगा, सब गुरु से, वैष्णवों से, और उनको घर में लोभ होगा। यदि लोभ नहीं हुआ किसी कारण से तो महाप्रभु जी का प्रचार जो वैधिक भक्ति है वो रामानुज के वैधिक भक्ति से ये वैशिष्ट है, इसका दोनों एक नहीं है। रामानुज का वैधिक भक्ति और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो वैधिक भक्ति है, उस वैधिक भक्ति का लाख कोटि जन्मों में राधानुगा के प्रति लोभ नहीं होगा। और महाप्रभु के संप्रदाय में अनुरुक्त में वैष्णव से जो वैधिक भक्ति होती है, ये वैधिक भक्ति से धीरे 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 राधानुगा में प्रवेश करने के बहुत से कारण होगा। इसलिए महाप्रभु के संप्रदाय में जो वैधिक भक्ति होती है ये वो ऐसी भक्ति नहीं है, वैधिक भक्ति पूर्ण नहीं है, ये राधानुगा निमित्त है, उसके तरफ में जरूर ले जाएगी। यदि कोई चैतन्य चेता में तो वही भक्ति वाला भी महाप्रभु का यदि सुने जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो होगा कि नहीं, राधानुगा मिले अवश्य होगा। रामानुज का लाख वर्ष तक वही भक्ति सुनते 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 थक जाएगा तभी राधानुगा के प्रति कभी भी लोभ नहीं आएगा। इसलिए वो वैधिक भक्ति और महाप्रभु जी ने जो प्रचारित किया श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, ये बहुत तेज है। एक अभी हम लोग वैधिक भक्ति का आचरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किंतु वैधिक भक्ति का रामानुज वाला यहाँ पर हो रहा है। उनमें राधा जी का नाम है, कहीं ललिता विशाखा का नाम है, सखाओं का नाम है, वहां पर बस लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
राधे गोविंद गोविंद राधे।
महाराज जी जैसे व्यक्ति में भी देखो कितना उल्लास हो रहा है, महाराज जी ये ऐसे ही खरी कथा है चैतन्य चेतन की। और गौरी वैष्णव का वही भक्ति भी राधानुगो सम्मिलित है, इस चीज को समझो। इसलिए कहते हैं बहुत कम कारिना है, रथे रथे खूब सावधानी से सुनना, घबराना मत, उछल उछल से जाने न हो। लीला सुखाया जी बहुत सरकार, इसे श्रीमती राजा जी स्वयं कार्य करते थे। उनका 360 प्रकार की जो गोपियां बतलाई गई राधा जी का एक एक भाव है, अलग नहीं है, एक एक भाव मूर्ति मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित है।
अदरवाइज
law.
So previously Guruji was explaining about Krishna's form and identity, and beginning yesterday, continuing today, describing about Srimati Radhika. So just as Krishna is Satchitananda Swarup, he is the embodiment of eternity, bliss and knowledge. So similarly, Srimati Radhika is the embodiment of eternity, bliss and knowledge. And she is Krishna's Parashakti, Krishna's internal potency. And that internal potency is Swabhaviki. Swabhaviki means it is natural. It is inherent within him. So that Swabhaviki Parashakti, that inherent internal potency of Krishna, it has many different varieties. It takes on many different forms to accomplish different purposes. And the highest manifestation is as Srimati Radhika, who is the embodiment of Mahabhava, the highest development of frame. So the different gopis of Raj, the eternal gopis of Raj, they are Kaya-jiva, they are direct bodily manifestation of Srimati Radhika. Of all the different manifestations of Srimati Radhika, she has three principal manifestations. One is the Vrajadevis, or the gopis of Raj, the queens of Dwarka, and also the Lakshmis of Vaikuntha. So the gopis of Raj, those who are the eternal associates in Madhurya Ras, they are kind of Yuma, they are direct bodily manifestations of Srimati Radhika. And the queens of Dwarka are described as a first. First they were described as Bhava Prakash. Somewhere else they were described as Bhava Prakash.
এই জন্য ঈশ্বর পরিপাদ
that all other manifestations, they are avatar. They have been manifested from Krishna. So similarly, Srimati Radhika is the source of all various shaktis, all various potencies of the Lord, of different varieties. And just as Krishna has many different types of incarnations, in various categories. Some are direct expansion, some are expansions of expansion, some are partial expansions, or expansions of partial expansions. So there's many different varieties. So similarly, Srimati Radhika has many different types of manifestations and expansions. So only those gopis who are just considered, who are external associates, they are Kaya Vyuha, they are direct bodily expansion of Srimati Radhika. And those who attain to the form of gopis by practicing sadhana in this world, and then who attain perfection in that sadhana, and then they go to the lok, they remain as sadhana siddh, or become sadhana siddh. They can never be Kaya Vyuha. So there is a distinction. And the queens of Dwarka, they are music Bimba Pratibimba. So this Bimba Pratibimba, to give an example, the Bimba is like the celestial bodies, like the sun, the moon, the planets, and that their reflections water are Pratibimba. So in the same way, Srimati Radhika is the source of all manifestations of the various Shaktis, and the queens are like Pratibimba, they're reflections of her. So, afterwards, Maharaj said that the queens are Prabha Prakash. Just as in Dwarka, Krishna has different manifestations, such as Vasudeva Sankarshan, Rudumna Niru, and these are Prabha Prakash, expansions of Krishna. So similarly, the queens of Dwarka are in the same category. And the Vrajadevis, they are directly expansions of Srimati Radhika, but they may differ in certain features. Like Lalita Vishaka, each of the gopis, particularly those who are the Kayavyu expansions of Srimati Radhika, they are all manifestations, they are all specific manifestations of particular moons of Srimati Radhika. They all embody different moons of Srimati Radhika. And they may differ slightly in form or appearance or dress or mood, but they are all ultimately the moons of Srimati Radhika. And this is all to give variety and ecstasy to Krishna in his loving exchanges. Without variety, there can be no love, not mere exaltation. So if there's only one form, given the quote from Chaitanya Charitamrita, that without many different gopis, then there can be no ulas, no exaltation.
So ulas to whom?
For Krishna. So therefore, Srimati Radhika manifests as all the different gopis in order to increase Krishna's ecstasy and in order to increase the variety of loving exchanges with Krishna. So just as if a tree has no flowers, no leaves, no blossoms, then what is the value of that tree? So similarly, Srimati Radhika manifests many, many forms in order to increase Krishna's pleasure. And the mandiris, like Rupa Mandiri, Rati Mandiri, they are also Kayavyu expansions of Srimati Radhika. And not only she manifests different forms, but also different moods. And there are five principal groups of gopis. So Paksh means those who belong to Srimati Radhika's own group. Vipaksh means those who are rivals to Srimati Radhika. Suripaksh means those who are friendly. And Sadastapaksh means those who are neutral to Srimati Radhika's group. But Srimati Radhika is the basis of everything. She is the foundation. When we say Swapaksh, means that they are part of her group. When we say Vipaksh, rival to her. Suripaksh, who are friendly to her. Sadastapaksh, those who are neutral to her. She is the basis and foundation of everything. They are ultimately manifestations. They are also manifestations of her to create different intrigues and varieties to please Krishna. And also the different moods she exhibits, like when she exhibits Ram, mood of jealous anger. That is also for increasing Krishna's pleasure. And when Chandravali hears that Krishna has gone to Srimati Radhika, then she also exhibits Ram. But her mind is not so high, it's not as developed as Srimati Radhika. And the nature of her mind is that she simply becomes silent. She doesn't say anything. She doesn't exhibit any external symptoms of the behavior of Krishna. It simply doesn't say anything. So this doesn't give so much ecstasy to Krishna. But when Srimati Radhika hears that Krishna has gone to the grove of Chandravali, then she becomes very angry with Krishna. And her mind is so intense, it is so developed, that Krishna has to perform great austerities to try to break that bond. And he also has to approach the feet of her sakyas, like Lalita and Vishaka, and he has to humble himself and put his head at their feet and beg that they will appeal to Srimati Radhika to again accept him. So all of these varieties of different moods and different gopis, they are all to give pleasure to Krishna. So it is very essential that when we are performing our sadhana, that we must cultivate this understanding. We must have an understanding of Krishna's lila and Krishna's associates, and what is their position, what is the nature of Srimati Radhika as the embodiment of Mahabhava, how she manifests different forms and different moods to give pleasure to Krishna. We must know all these things if we aspire to enter into that realm. And by hearing all these things, we'll naturally develop mode, we'll develop greed to attain this mood. And Srila Gurudev was saying that if we have come